Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर लगे 6 साल की रोक, SC में याचिका, फिर क्या हुआ? पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग को पार्टी बनाते हुए फातिमा ने अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पीएम मोदी पर आरोप लगाया गया था कि वह भगवान और उनके मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अर्जी में कहा गया कि पीएम मोदी लगातार भगवान और उनके मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा करना गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लग जानी चाहिए। इस अर्जी को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने याची से कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता, इस संबंध में आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए। अदालत ने पूछा, क्या आपने अथॉरिटीज का रुख किया? पहले आपको वहीं जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी के बाद याची ने अर्जी को वापस ले लिया। फातिमा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे और इस तरह उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया था कि पीएम मोदी ने मतदाताओं से भाजपा के नाम पर वोट करने की अपील की। रेप का केस दर्ज, 21 बार लगा जुर्माना, कौन है मुंबई होर्डिंग कांड का गुनहगार, 14 लोगों की ले ली जान। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 74 लोग घायल हैं। इस बीच अवैध होर्डिंग के मालिक की तलाश जारी है। होर्डिंग कारोबार का मालिक पुराना अपराधी बताया जा रहा है। अवैध होर्डिंग के मालिक पर इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया था। मुंबई होर्डिंग ढहने की घटना पंथ नगर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हुई थी। यहां की पुलिस ने सोमवार रात को एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के 51 वर्षीय निदेशक भावेश प्रभुदास भिंडे के खिलाफ FIR दर्ज की है। भिंडे के पास 10 साल की लीज पर होर्डिंग का ठेका था। गौरतलब है कि सोमवार को मुंबई में आई धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के दौरान घाटकोपर के एक पेट्रोल पंप पर 100 फुट लंबी अवैध होर्डिंग गिर गई थी। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों में से 31 लोगों को राजावाड़ी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अधिकारी ने कहा कि तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि भिंडे के खिलाफ इस साल 24 जनवरी को मुलुंड पुलिस स्टेशन में बलात्कार और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। अंततः उसे बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई। मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक अजय जोशी ने कहा, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। मामले में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। भिंडे ने 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। गाजा में युद्ध नहीं रुका तो UN में भारत ने इजराइल हमास दोनों को सुनाया शांति का रास्ता भी बताया। गाजा में मानवीय संकट को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर निंदा की है। भारत ने कहा कि किसी भी स्थिति में नागरिकों की मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि जिस तरह से हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध में आम जनता पिस रही है, वह आने वाले समय में बड़े संकट की चेतावनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा, 7 महीने से गाजा में युद्ध चल रहा है। ऐसे में बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी यह संकट और भी बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2728 को स्वीकार करना एक सकारात्मक पहल हो सकती है। उन्होंने कहा, भारत ने कई मौकों पर युद्ध का विरोध किया है। इसमें से एक इजरायल और हमास के बीच का युद्ध भी है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं को भी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे जो मानवीय संकट पैदा हुआ है, उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में हर किसी को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। गाजा के मानवीय संकट के बारे में बोलते हुए कंबोज ने कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाने की कोई भी सफाई नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया गया, वह बेहद हैरान करने वाला था। भारत लंबे समय से आतंकवाद का विरोध करता रहा है। वहीं बंधकों को बिना किसी शर्त को तत्काल रिहा कर देना चाहिए। वहीं टू स्टेट सलूशन को लेकर कंबोज ने कहा, हमारी सरकार ने हमेशा ही टू स्टेट सलूशन पर जोर दिया है। इसे बातचीत के जरिए ही साकार किया जा सकता है। इससे क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। मनोकामना पूरी नहीं हुई तो इतना नाराज हुआ भक्त कि मंदिरों में ही लगा दी आग। गुजरात का एक हिंदू शख्स भगवान से नाराज हो गया। गुस्से में उसने दो दो मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद एक मंदिर की प्रतिमा को नुकसान भी पहुंचा है। आरोपी ने एक मंदिर में टायर तो दूसरे में लकड़ी की मदद से आग लगा दी। यही नहीं, आरोपी ने एक तीसरे मंदिर को भी जलाने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में इलाके के लोगों को लगा कि किसी शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब सभी के होश उड़ गए। यह राजकोट जिले का मामला है। देश गुजरात की रिपोर्ट के मुताबिक भगवान से निराश होने के चलते राजकोट के झियाना गांव के एक शख्स ने मंदिरों में आग लगा दी। आरोपी पहले इसी गांव का प्रधान था। वह भगवान से काफी नाराज था। उसने गांव के रामदेव पीर मंदिर और मिल्डी माता मंदिर में आग लगा दी। मंदिरों में आग लगाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक यह 13 मई की घटना है। FIR में बताया गया कि रामदेव पीर मंदिर में टायरों की मदद से आग लगा दी गई। आग लगने से मूर्ति को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं मेल्डी माता मंदिर में लकड़ी से आग लगाई गई थी। इसके अलावा एक और मंदिर में आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मंदिर का कपाट बाहर से बंद था। कपड़े में आग लगाकर मंदिर के ऊपर फेंका गया था। इलाके के 3 मंदिरों में आगजनी की घटना पर शुरुआत में लोगों को लगा कि यह किसी असामाजिक तत्व का काम है। इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। RCB फैंस के लिए बुरी खबर, IPL 2024 प्लेऑफ्स में पहुंचने के सपने पर फिर सकता है पानी। IPL 2024 के फाइनल, क्वालिफायर या एलिमिनेटर मैच के लिए कोई बेताब हो या ना हो, लेकिन शनिवार 18 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये मुकाबला एक तरह से IPL 2024 का नॉकआउट मैच हो सकता है, जिससे प्लेऑफ का टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि RCB के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसके बारे में जान लीजिए। दरअसल आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है कि अगर 14 अंकों पर प्लेऑफ का टिकट मिलता है तो फिर ये मैच नॉकआउट की तरह होगा। सीएसके की टीम चाहेगी कि मुकाबला अगर हार भी जाए तो 18 रनों से कम के अंतर से हारे या डिफेंड करते हुए आखिरी ओवर में हारे। आरसीबी को नेट रन रेट में सीएसके से आगे निकलने के लिए 18 रनों से जीत की जरूरत होगी या फिर मैच 18 एक ओवर में फिनिश करने के बारे में सोचना होगा। हालांकि आरसीबी के फैंस को ये सुनकर झटका लग सकता है कि मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है। जी हाँ, ये सच है। वेदर रिपोर्ट की माने तो शनिवार 15 मई को बेंगलुरु में जमकर बारिश होने की संभावना है। 10 या 20% नहीं बल्कि 65% के आसपास संभावना है कि शनिवार को बारिश हो। इतना ही नहीं, जिस समय मैच खेला जाना है उस समय की रिपोर्ट कहती है कि बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी देखने को मिल सकता है।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HTSmartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।